हमारी मेंटालिटी से है। जो बच्चे लव से हमसे सीखते हैं वो 4-5% से ज्यादा नहीं है। मसलन आप लफ्ज में कह रहे हैं इमाम की नुसरत के लिए तैयार होना बेटा, मेरी तरफ से तुम्हें सिर्फ एक नसीहत है, अपने इमाम की नुसरत करना। इसका असर इस कहने का इसके ऊपर कितने परसेंट है? 5%, बहुत लगा लीजिए 10%, इस ज्यादा नहीं है। 90% कहां से लेगा? कहे से नहीं लेगा, किए से लेगा, और किए से ज्यादा आपकी मेंटेलिटी से लेगा, आपकी मेंटेलिटी से लेगा, आपके बिहेवियर से लेगा। अच्छा, ये मेंटेलिटी और बिहेवियर होती है, ये कहां पर रिफ्लेक्ट होती है? ये आपकी अनइंटेंशनल डिसीशंस पर रिफ्लेक्ट हो रही होती है। आप गैर इरादी तौर पर कुछ फैसले कर रहे होते हैं, कुछ रिएक्शंस दे रहे होते हैं, वहां पर ये आपकी इंटेंशन मेंटेलिटी रिफ्लेक्ट होती है, बच्चा उससे सीख लेता है, वहां से सीख लेता है। और कहे से कितना सीखता है? 5%, 10%, इस ज्यादा नहीं। अच्छा, आप इससे कह रहे हैं कि बेटा तुम्हारी जिंदगी का एक ही मकसद है, तुम मेरे इमाम की नुसरत करना, आपके कहे से 10% तैयारी होगी, 90% वो डिपेंड कर रहा होगा किस बात पे? आपने की थी तैयारी इस पे, आपने कितनी तैयारी की थी? अच्छा, अब सवाल यह है कि भाई इमाम की नुसरत के लिए जो तैयारी होनी है वो क्या क्या तैयारी है, ताकि आप करें। आज की शब्द जो है मसलन तज़किरा इसी बात का है कि भाई इमाम की नुसरत करनी है, इमाम की नुसरत के लिए आपने तैयारी क्या करनी है। तो अब हम लोग, हमारे ऊपर एक फेज आता है, वो ये आता है, इंसान जो है वो तबीयतन सहल पसंद है, आसान काम को ले लेता है, आसान काम को ले लेता है। मिसाल के तौर पर अगर कोई मुझसे ये कहे इमाम की नुसरत करनी है या दुआए फरज पढ़नी है, तो मैं कहूंगा दुआए फरज पढ़नी। क्यों? दुआ पढ़ना आसान काम। अगर कोई मुझसे कहे रोजाना 15 मिनट इमाम के दुश्मनों का ताकुब करना है या 15 मिनट दुआए अहद पढ़नी है, तो मैं क्या करूंगा? दुआए पढ़ लूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकली 15 मिनट अपने आप को इन्वॉल्व करूं किसी दुश्मन को पकड़ने के लिए, उसके पीछे जाऊं, क्योंकि वो भी तो मेरे पीछे आएगा, फिर तो मैं दुआ अहद पढ़ूंगा जिसमें पीछे कोई नहीं आएगा। सही है, ये हम लोग हमारी सहल पसंदी है। अच्छा, इस सहल पसंदी में जब आखिरी 30-35 साल में हमारे सामने इमाम का तस्करा बहुत हुआ, तो हमने कुछ चीजों को अडॉप्ट कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा हो गया। मसलन हम लोग पहले दुआए फर्ज नहीं जानते थे, 35-40 साल पहले हम लोग नहीं जानते थे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अब जान गए, अब पढ़ने लगे। जब 30-35 साल पहले लोगों ने हमारे सामने इलाही अज़मत बड़ा पढ़ना शुरू किया तो हमें नहीं पता था, हम दुआ मिलना नहीं जानते थे 35-40 साल पहले। शायद बहुत कम परसेंटेज ऐसे लोगों की थी जिनको पता होगा दुआ नुतबा क्या है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तरक्की हुई है, हमने दुआ नुतबा को सीख लिया, दुआ फर्ज को समझ लिया, इलाही अज़मत बड़ा पढ़ना शुरू कर दिया, दुआ अहद हमें पता चल गई, आहिस्ता आहिस्ता हमने चीजों को लेना शुरू कर दिया। लेकिन इसमें एक मुश्किल हो रही है, वो क्या है? हम कहीं लफ्ज पर रुके हुए तो नहीं है, अल्फाज पर रुके हुए तो नहीं है। ये स्टेज भी अच्छा था, ये भी नहीं था हमारे पास, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तरक्की हुई है, हमने कुछ हासिल किया बिलाखिर। बस अब आप तसव्वुर फरमाइए, 35 साल पहले चले जाइए, लोगों से पूछे माहे रमजान के अंदर कितने अमाल हो रहे थे। मैं खुद शिया मोहल्ले के अंदर रहता था, बड़ी मस्जिद है, अभी क्या नाम लूं, आप जानते हैं मस्जिद खैरुल अमल, हम उसके बराबर में आराम करते थे, पूरे माहे रमजान के अंदर सिर्फ शबाए कदर के अंदर पूरा होता था, उसके अलावा पूरा ही नहीं था। कोई दुआए इफ्तिताह पढ़े, कोई दुआए सहर पढ़े, कहां की कहानी, कुछ था ही नहीं। अगर कोई पढ़ भी रहा होगा गोशा किनार के अंदर, तो उन्होंने आवाम को नहीं पता था ये क्या होगा, शायद कोई पढ़ रहा होगा, मैं नहीं कह रहा। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कौन सी जगह, कौन सी इमाम बारगाह मस्जिद है जहां पर कुछ ना कुछ हो रहा है। अब जो आमाल होते हैं, जरा देखिए पब्लिक कितनी भरी हुई होती है, हर इमाम बारगाह के अंदर, हर मस्जिद के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बजम गफीर होता है, कराची में तो खैर आबादी भी ज्यादा है, कुछ डेवलप हुई है चीजें, लेकिन कमी किस बात की है? कमी यह है कि प्रैक्टिकली मूव नहीं हो रहे हैं, लफ्ज के अंदर तो मूव हो रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो कुछ होना चाहिए, अब आप मुझसे कह सकते हैं भाई प्रैक्टिकली क्या होना चाहिए था, तो मैं चंद चीजें आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। ये जो शब है इसका हमारे अगले साल के अमाल पर बहुत असर है, बहुत असर है। खुदा मुताला ने निजाम ऐसा रखा है, मन जद्दा वजद, जो पाने की कोशिश करेगा वो पा लेगा, ये खुदा का निजाम है। वह लैस लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए बस वही कुछ है जिसकी वो कोशिश करेगा। आज की जैसी शब इन बातों को तय करने में बहुत असर डालती है कि तुम्हारी कोशिश किस चीज के लिए, क्या चाहते हो तुम। गोया मिसाल के तौर पर खुदा की रहमत के दरवाजे खुले हुए हैं, जो सिंबॉलिक टर्म्स में कहा जाता है, और खुदा ये कह रहा है कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। अच्छा, अब मिसाल के तौर पर मैं उससे यही मांग लिया, खुदा मेरा घर अगले साल तक जरा बड़ा हो जाए, शायद मिल जाएगा। और कुछ लोग सीरियसली इस शब्द में खुदा से मांग रहे होंगे, खुदा अगले साल तक आते आते इमाम की नुसरत की मेरी तैयारी पूरी हो जाए। आप देखिए आप क्या मांगना चाह रहे हैं, चूंकि आपके मांगने पर असर पड़ेगा उन जुमलों का भी जो मैं कहूंगा, तो मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज कर दूं कि आपको मांगना क्या चाहिए नुसरत के लिए। ये मैं आपकी खिदमत में अर्ज करने की कोशिश करूंगा। दुरूद भेजिएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद दिल कर। इतनी चीजें बीच में आ जाती हैं कि वो गुजारते गुजारते टाइम निकल जाता है, और उसके बाद फिर इंसान सोचता है कि अब ये जो मेन कॉन्सेप्ट था इस तक बड़ी मुश्किल से आए थे। अच्छा, आप लोगों को लाने में भी देर लग जाती है ना, मसला सारा ये है। अगर आपके दिमाग इतने शार्प होते और इतने कंट्रोल होते कि जैसे ही आप बैठते आपकी सारी अटेंशन हमारी तरफ हो जाती, तो हमें इतना बड़ा मुकदमा नहीं बनाना पड़े। लेकिन हमें ये सब करना पड़ता है, क्योंकि आप मुख्तलिफ बैकग्राउंड से आ रहे होते हैं, हर कोई अपनी अपनी फिक्रों में होता है, कोई सोच रहा है गाड़ी पार्क कहाँ की है, कोई पता नहीं क्या सोच रहा है क्या सोच रहा है, सबको ट्रैक करते करते इतनी देर लग जाती है, 30-40 मिनट लग जाते हैं। फिर आपका कॉन्फिडेंस लेना भी बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जब कोई पढ़ने के लिए बैठता है तो पहले तो आप यही इवेलुएट करते रहते हैं कि ये कैसा है, ये सुननी है नहीं सुननी है, तो इसमें आपको कन्विंस करते करते बड़ी देर लग जाती है कि भाई कैसा भी है, अभी तो सुन लो, अब तो बैठे रही हो ना। तो ये सब हम लोगों के ऊपर बीत रही होती है। अब हम लोग कभी कभी बोल भी देते हैं कि भाई चलो शेयर कर लेते हैं एक्सपीरियंस आपके साथ, तो भाई अगर आप पहले मिनट से ही थोड़ा हम पर इतमाद कर लें कि भाई ये भी कोई कारामत बात कर सकता है, थोड़ा आप ये सोच लें कि हम मिसाल के तौर पर आपके आइडियोलॉजी को खराब करने नहीं आए भैया, कुछ ना कुछ साथ देने आए। कई बातें तो हमें इसलिए करनी पड़ती हैं ताकि आपको यकीन दिलाएं कि भाई जो आप सोच रहे हम भी उसी के मानने वाले हैं यार। बहुत मसाइल है यहां पर, काफी मुश्किलात चल रही हैं। बहरहाल खुदा आपको मजीद दीन की राह में तरक्की और कमाल नसीब फरमाए इंशाअल्लाह, अपने इमाम की नुसरत की राह में मजीद सआदत नसीब फरमाए इंशाअल्लाह, वक्त के इमाम के नजर लुत्फ को हासिल करने के लिए। ये देखिए जुमला बहुत अहम है, नजर लुत्फ को हासिल करने के लिए। देखिए हम उनकी नजरों से कभी ओझल नहीं है, लेकिन एक नजर होती है नजर और एक होती है नजर लुत्फ। नजर तो हमेशा रहती है, नजर लुत्फ पड़नी चाहिए। आपकी नजर से और आपके दिमाग से आपका बच्चा कभी नहीं निकलेगा, लेकिन एक दफा मां मोहब्बत से अपने बच्चे को देखती है, खुदा की रहमतें उस बच्चे पे बरसने लगती हैं जब उसके मां बाप उसको दुआओं में याद करते हैं। और मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, एक लहजे की नजर लुत्फ इमाम की चाहिए। सारी रात में और आप बैठे रहे ना यहां पर, सारी रात गिड़गिड़ाते रहे, और इस सारी रात गिड़गिड़ाने के नतीजे में ऐसा हो कि एक सेकंड के लिए उनकी नजर लुत्फ मेरे और आपके ऊपर पड़ जाए, बस हमारी मेहनत वहीं पर हासिल हो गई। तो इमाम की नजर लुत्फ के हुसूल के लिए दुरूद भेजें मोहम्मद नुसरत के लिए। क्या चाहिए, क्या मांगू खुदा से, दुआएं तो मैं पढ़ूंगा, अमाल तो मैं करूंगा और उसको मैं अर्ज करता रहता हूं। आप भी जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन सबसे अहम अगर कोई कहे कि भाई सबसे अहम चीज क्या है, क्यों बहुत सारे लोग हैं रोजाना दुआओं को वेट करते रहते हैं, وقت آنے پر کربلا سے غائب ہو جاتے ہیں. یہ کربلا سے کم نہیں ہے جو ہونے والا ہے, اسے کربلا سے کم مت سوچیے گا. اور جن لوگوں نے کربلا میں سید الشہداء کا ساتھ دیا تھا ان کی کوالٹیز کو دیکھیے گا, وہ کوالٹیز ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہیں, طلب چھوٹی نہیں ہے. اچھا اگر طلب کم ہوتی تو 1100 سال انتظار کس بات کا تھا؟ اگر معمولی کام تھا تو اس کے لیے 1100 سال انتظار کی کیا ضرورت تھی؟ کام معمولی نہیں ہے, طلب چھوٹی نہیں ہے, طلب اہم ہے. مثلا کیا چاہیے؟ مثال کے طور پر میں 1 2 3 کر رہا ہوں, نہیں کہہ رہا یہ پرائیورٹی ہے, لیکن بہرحال اہم ہے. وہ کیا ہے؟ پہلی بات, اب پہلے میں ٹاپ پرائیورٹی نہیں ہے لیکن پرائیورٹیز میں سے ہے, وہ کیا ہے؟ اٹیچمنٹس نہیں چاہیے, اٹیچمنٹس نہیں چاہیے. اچھا اٹیچمنٹس کا مطلب کیا ہے؟ درود بھیجے گا محمد آل محمد, مومنین کے نام پر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. اذان محترم, میں تقریباً 5 منٹ, تقریباً 5-7 منٹ اور لوں گا, میں بون کر رہا ہوں اپنے آپ کو تاکہ میں کہے کے اوپر ختم کر لوں, ورنہ یہ داستان بہت چل جائے گی اور آپ تھوڑے سے تھک بھی ہیں. تھوڑی سی میرے خیال میں اس ہال میں گرمی بھی تھوڑی بڑھ رہی ہے, میں احساس کر رہا ہوں اس بات کو, لیکن آپ مطمئن رہے گا آپ میں سے مردوں میں سے کسی نے اتنے کپڑے نہیں پہنے ہوں گے جتنے میں نے پہنے ہوئے, آپ پریشان نہیں ہوئیے گا. خواتین اگر گرمی احساس کریں تو ان کا حق ہے, لیکن آپ کا بہرحال اتنا زیادہ حق نہیں ہے. ٹھیک ہے, تھوڑا سا آپ جیکٹ اتار لیجیے گا, دیکھیے میں تو جیکٹ بھی نہیں اتار سکتا اپنی, تو آپ پریشان نہیں ہوئیے گا اس بات سے. ایک بار پھر اپنے ذہنوں کی تر و تازگی کے لیے درود بھیجیں محمد آل محمد. کبھی کبھی اس طرح کی کوئی چیز مشکل برداشت کرنی پڑتی ہے نا, تو میں ایک کام سوچتا ہوں, میں یہ سوچتا ہوں کیا یہ بہتر نہیں کہ پریکٹس کے لیے کوئی مشکل برداشت کر لوں, پریکٹس کی خاطر. کبھی پانی نہ ملے, چلو پریکٹس کی خاطر ہی پیاسے رہ لوں. گرمی ہے نا, پریکٹس کی خاطر ہی گرمی سہ لوں. کیوں, شاید اس سے زیادہ سہنی پڑے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, تو پریکٹس کی خاطر ہی کر لو. تو میں جب کبھی, اب میں شیئر کر رہا ہوں ایسے ہی, جب میں عاشور کے جا رہا ہوتا ہوں گاڑی میں تو میں بچوں سے کہتا ہوں بیٹا کم سے کم آج کے دن اے سی مت چلاؤ, تھوڑا گرمی سا ہو, عاشور کا دن گرمی برداشت کر دو, اچھا نہیں ہے, کم سے کم آج کے دن تو گرمی سہ لو. تو تھوڑا پریکٹس کی خاطر تھوڑا سختی اٹھاؤ, کیا جائے گا, اچھا ہے ثواب ملے گا. اچھا جس کے لیے سختی اٹھا رہے ہیں اس میں ایک خوبی ہے, پاؤں کا کنکر بھی آئے نا تو جزا دیتا ہے, پاؤں میں کنکر بھی آیا ان کے نام پر جزا دیں گے, چھوڑتے نہیں ہیں پھر. تو اعزاز مطلب کیا چاہیے؟ سب سے پہلے اٹیچمنٹس نہیں چاہیے. اچھا اٹیچمنٹس کیا ہوتی ہیں؟ اٹیچمنٹس یہ ہوتی ہیں کہ جب آپ کو کسی ہدف کے لیے آگے بڑھنا ہوتا ہے تو آپ کو کچھ چیزیں کھونی بھی پڑتی ہیں, قربان بھی کرنا پڑتا ہے. بھائی جب آپ اپنے امام کی نصرت کے لیے آگے بڑھیں گے تو آپ کو اپنے آرام دہ گھر سے نکلنا تو ہوگا نا, نکلنا پڑے گا. اچھا یہ جو مڈل ایسٹ کا انوائرمنٹ ہے یہ کافی ہارش انوائرمنٹ ہے, صحیح, آپ کو اس میں جانا ہوگا, آپ سیریس لے رہے ہیں نا, یا تو آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کہانی ہو رہی ہے. نہیں کہانی نہیں, جب امیر المومنین جنگ پہ جاتے تھے تو جاتے تھے جنگ پہ, 8-8 مہینے جنگ میں رہتے تھے. وقت کے امام تشریف لائیں گے, کیا نہیں لکھا ہوا کہ جنگیں ہوں گی؟ تو آپ کیا ان لوگوں میں سے جو امام سے کہیں گے مولا میں چندہ دے دوں گا فوجی کہیں اور سے لے لیں؟ آپ نے یہ سوچا ہے کیا؟ ہمارے کچھ بھائیوں نے سوچا ہوا ہے. افریقہ میں ایک جگہ پہ گیا, وہاں ایک سینٹر تھا, اس کے پاس منتھلی انکم تقریباً $1,00,000 تھی. میں نے اس سے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو تم, کس لیے رکھا ہے؟ کہنے کا مولانا میں نے بینک پہ رکھا ہوا ہے, مولا کو دوں گا. بہت اچھا کام کر رہے ہو بھائی, یہ کس چکر میں رکھا ہے اس نے؟ امام کو دے گا, میں اتنے ملین دے رہا ہوں, مجھے معاف کریں کسی اور کو لے جائیں. इसने इस चक्कर में रखा हुआ है। अच्छा, आपने वाकई जाना है मिडिल ईस्ट लड़ने के लिए जंग में? अच्छा, जब आपको जाना होगा तो आप अपने घर बार को छोड़ के जाएंगे नहीं जाएंगे?
हाँ।
और लत कुर्बान करेंगे? हाँ करेंगे। और अगर अटैचमेंट इतनी है कि छोड़ ना सके? कितनी अटैचमेंट रखी है? इतनी रखी है कि जिस वक्त चाहूं छोड़ दूं, या नहीं कुछ सोचना पड़ेगा? अगर ऐसी है कि नहीं कुछ सोचना पड़ेगा, फिर बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। आपको और मुझे अपनी दुनिया में अपने सराउंडिंग से ऐसा राब्ता रखना है कि ये किसी भी टाइम पर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर लूंगा, और वो करूंगा जो इमाम कह रहे हैं। मसलन जब मैं घर छोड़ूंगा तो मैंने अपने घर को बहुत सोच समझ के बनाया था कि इसमें मुझे सुकून मिलेगा। छोड़ने में कितनी देर लगाओगे? इसी को सारी जिंदगी पे ले लिए। मिसाल के तौर पर मैं अपने लिए वर्स केस देखता हूं। मैं कोशिश कर रहा होता हूं कभी कभी, जिसको आप लोग कहते हैं वर्स केस सिनेरियो, तो मैं वर्स केस सिनेरियो को सोचता हूं। इमाम तशरीफ लाए और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें 30-32 साल हो गए तालिब इल्म हुए हुए, लेकिन खुदा ना करे, पॉसिबल तो है, हो सकता है वो मुझसे कहें आज से तुम्हें कोई हक नहीं है कि तुम दीन के नाम पर बोलो, तुम एलिजिबल नहीं हो। तो फिर मैं क्या करूं? वो कहें कि आज से तुम्हारा दीन के नाम पर बोलना बंद, जाओ कोई काम काज करो, मेहनत मजदूरी करो, दीन के नाम पर नहीं बोल सकते। अच्छा मौला, मुझे 32 साल हो गए तालिब इल्म हुए हुए, 20 साल से ज्यादा हो गए बोलते हुए हुए, 10 मिलियन के करीब मेरे डाउनलोड्स हैं, ये सब बंद कर दूं आज ही, सारे डिलीट कर दूं? कह रहे हाँ हाँ कर दो। कितनी देर लगाऊंगा सोचने में? एक सेकंड भी लगाऊं ना तो ये नाफरमानी है। मेरे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, वो ये मुझसे कहे आज से बोलना बंद, जितना बोला है सब डिलीट कर दो, और अपने नाम के आगे मौलाना भी नहीं लिखना। और मुझे सिर्फ एक जुमला कहना है, मौला ऐसे ही होगा, खत्म, आज से बंद, आपसे हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर इससे कम कुछ किया तो नाफरमानी है। हर चीज के लिए ऐसे ही सोचो, अटैचमेंट्स मरवा देती हैं। आप इमाम से वफादार हैं या अपनी किसी पोस्ट से वफादार हैं? इमाम के वफादार बनो, दुनिया के वफादार मत बनो। अच्छा, दुनिया लेना बुरा है? नहीं, बुरा नहीं है। आप घर बनाए, किसने मना किया? बिजनेस करें, घर बनाए, बीवी बच्चे, काम काज, शोहरत भी हो आपके पास, कोई मसला नहीं है। लेकिन जिस दिन इमाम ने कुछ कह दिया, बस फिर नहीं चाहिए। इसको हम कहते हैं अटैचमेंट्स को खत्म करो। चीजें होनी चाहिए, इनसे अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। घर होना बुरा नहीं है, कोई ये समझे मैं कह रहा हूं घर मत बनाओ, नहीं, घर होना बुरा नहीं है, बनाओ जितना भी बनाना है, जितनी जरूरत है बनाते जाओ, कोई मसला थोड़ी है। बिजनेस करो, पैसा कमाओ, सब काम करो, अटैचमेंट मत बनाओ। अपने दिल को इससे वाबस्ता मत करो। दिल को किससे वाबस्ता करो? इमाम से। हमारी दिल की मोहब्बतें उनकी अमानत हैं, खयानत मत करो। दिल की मोहब्बतें सिर्फ उनको दो, वो साहिब अमानत है। काश हम ये कर सकें, काश हम ये कर सकें। अच्छा, इस बात पे कैसे यकीन करूं कि मैंने अटैचमेंट को खत्म कर लिया है? चैलेंज ले लो, छोटे छोटे चैलेंज लेके अपने आप को देखो। मिसाल के तौर पर एक पैसा हाथ में आया, ये सोचो ये पैसा अगर अभी इमाम के नाम पर किसी को दे सकता हूं, किसी काम में लगा सकता हूं, मैं नहीं कह रहा बेवकूफाना फैसले करूं, चैलेंज के नाम पर थोड़ा थोड़ा चैलेंज लो। मिसाल के तौर पर मेरे जैसे आदमी क्या चैलेंज ले? मेरे भाई शोएब बैठे हैं, हम लोग क्या चैलेंज लें? हम एक जगह पे देखें ये काम इमाम के नाम पे नहीं हो रहा है और हमें बुलाया जा रहा है इस दुनिया पर रस्सी के लिए, नहीं जाएंगे, इमाम के लिए नहीं हो रहा है, दुनिया की खातिर हो रहा है, मैं क्यों जाऊं? डालो अपने आपको चैलेंज में ना, चार जगह अपने आपको खींचो, पीछे घसीटो, तो तुम्हें समझ में आएगा कि कल अगर इमाम ने तुम्हारे को कहा कि मत करो तो तुम करोगे या नहीं करोगे। तो ऐसा मैं आपकी खिदमत में भी अर्ज करूंगा, कुछ चैलेंज है अपने अंदर। कुछ चीजों पर, मैं ये नहीं कह रहा गैर माकूल फैसले करने लगे, गैर आकलाना फैसले करने लगे, नहीं लॉजिकल डिसीजंस लें, लेकिन चैलेंज दें अपने आप को। इस तरह और आप अपनी अटैचमेंट से लड़ सकते हैं। और इसी के साथ बहुत सारी बातें हैं, मेरा टाइम मैंने जो अपने लिए बाउंड किया था वो भी खत्म हो रहा है, तो अब मुझे बहुत सारी बातें कहनी पड़ रही हैं, लेकिन मैं जल्दी जल्दी आपसे एक बात कहूंगा, इमोशनल बनो, अकलमंद बने। इमाम इमोशनल नहीं है, इमाम टॉप ऑफ द लॉजिक है, लॉजिकल लोगों को पसंद करेंगे। ये सही है कि हमारे अंदर जज्बा होना चाहिए, लेकिन ये सही नहीं है कि जज्बा हमारे ऊपर हाकिम होना चाहिए। जज्बा होना जरूरी है, हाकिमियत अकल की जरूरी है, अकल को हाकिम होना चाहिए। बदकिस्मती से हमारी कौम ऐसी नहीं है, हमारे पर जज्बात हाकिम है। नतीजा क्या होता है, दुश्मन भी हमसे फायदा उठा लेता है। इमोशंस कंट्रोल में होने चाहिए, लॉजिक को रूल करना चाहिए। मेरे क्या है, इमोशंस नहीं होने चाहिए, इमोशंस नहीं हुए तो हम लोग डेड बॉडीज बन जाएंगे, हम अकल के कब्रिस्तान बनेंगे फिर, लेकिन इमोशंस को अकल के अंदर होना चाहिए, उसको लेके चले। तो दूसरी बात जो मुझे समझ में आती है, पहली बात अटैचमेंट्स को खत्म होना चाहिए। अटैचमेंट्स होते हुए हम कुर्बानी नहीं दे सकेंगे। तो आप मिसाल के तौर पर आज की जैसी शर्म में खुदा मुताल से मांग सकते हैं कि खुदा अगर कोई ऐसी चीज है जो मेरी और इमाम के दरमियान रुकावट बन सकती है, खुदा छीन ले। आसान है, बहुत मुश्किल है। मैंने कहा छीन ले, हाँ शायद मेरा सारा पैसा चले जाए, मैं गरीब हो जाऊंगा, गुर्बत बर्दाश्त करूं या नहीं करूं, कर लूं। उस अमीर होने का क्या फायदा जिसमें इमाम से दूर रहूं, क्या फायदा? तो उस गुर्बत को कबूल कर लूं जिसकी वजह से मैं इमाम से नजदीक हो सकूं। मैं नहीं कह रहा गरीब इमाम से नजदीक होगा, अमीर इमाम से दूर होगा, ये नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर मेरे पास वो अमारत है जो मुझे इमाम से दूर करे, तो फिर मैं खुदा से कहूं खुदा ये अमारत छीन ले, मुझे गुर्बत दे दे जो मुझे इमाम से नजदीक करे। बिल असल न गुर्बत नजदीक करती है न अमारत नजदीक करती है, लेकिन मेरे केस में अगर मेरी अमानत रुकावट है अमारत, तो छीन ले, फिर मुझे गुर्बत कबूल है, शोहरत कबूल है, या इसके मुकाबले में कुछ भी सोच लें। मैं चैलेंज नहीं दे रहा आपको ना अपने आप को। अगर इमाम के नाम पे कोई बदनामी उठानी पड़े कबूल है, इज्जत कबूल है, या अगर इमाम के नाम पर जाहिरी बेइज्जती उठानी पड़े कबूल है। मैं अपने मौला से कहूंगा मौला आज तक आपके नाम पे इज्जत ली है, हमने देखना इज्जत मिली है, इज्जत मिलती है ना। तो मैं कहूंगा मौला मैंने 30 साल हो गए आज तक आपके नाम पे इज्जत ली है, मौला इतना ताकतवर कर दें कि कल आपके नाम पर जाहिरी बेइज्जती उठानी पड़े ना, उठा लूं फिर मैं। अगर ये इज्जत रुकावट है फिर ये इज्जत भी नहीं चाहिए। हमें कुछ नहीं चाहिए इमाम के मुकाबले में, इतना तैयार करना पड़ेगा कि इमाम के मुकाबले में कोई चीज अगर आनी है, दौलत ताकत शोहरत इज्जत नहीं चाहिए। इज्जत बुरी चीज है? नहीं, इज्जत बुरी चीज नहीं है, इज्जत होनी चाहिए, लेकिन अगर ये रुकावट बनने वाली है फिर नहीं चाहिए। इस तरह अपने आप को तैयार कर लें। बस अटैचमेंट्स नहीं चाहिए जो खुदा जो मेरे और इमाम के दरमियान रुकावट बने, अटैचमेंट्स नहीं चाहिए। ऐसे जज्बात नहीं चाहिए जो मुझे इमाम से दूर कर रहा हूं, ऐसी अकल भी नहीं चाहिए जो इमाम से दूर कर रही हो, अकल भी वो चाहिए जो इमाम से नजदीक लेकर जाए, जज्बात भी वो चाहिए जो इमाम से नजदीक लेकर जाए। इन सब को रखते हुए औलाद किसे चाहिए? बड़े बड़े लोगों के पांव हिलने लगते हैं, लरजने लगते हैं जब यहां पे बात आती है, जब यहां बात आती है। जो कामयाब हुए हैं वो यहीं कामयाब हुए हैं, जब उन्होंने खुदा से ये कहा कि खुदाया सब कुछ वो चाहिए जो इमाम से नजदीक लाए, फिर वरना फिर नहीं चाहिए। अज़ान मुतरम ये सब मांगने की शब है, और चूंकि 15 शाबान की शब है, इमाम के कुर्ब को तलब करना खुदा से ये बड़ी बात है। तो आज की शब मुकम्मल तवज्जो के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने आप को इमाम की सम्प लेकर चले, अपनी दुआओं के अंदर, अपने जिक्र के अंदर, अपनी फिक्र के अंदर इस तरह से लेके चलें कि ज़ाहिर है कि हम इतना ज़्यादा कंसंट्रेटेड नहीं सोच पाएंगे, बहुत सारी चीज़ें और भी हो रही होंगी, लेकिन मेन हमारी कंसंट्रेशन इसके ऊपर रहे कि मुझे अपने इमाम के नज़दीक जाना है। और मैं एक आखिरी जुमला बस यर्ज करूँगा, वो चीज़ सबसे गलत है जो मुझे पता है कि इमाम नहीं चाहते और मैं नहीं छोड़ पा रहा, वो सब गलत है। मुझसे कोई पूछे कौन सा गुनाह रुकावट बनता है, मैं कहूंगा वो गुनाह रुकावट बनता है जिसका मुझे पता है इमाम से दूर लेके जाएगा, मैं फिर भी कर रहा हूं, उसको छोड़ना सबसे अहम है। बस अगर आप और मैं अपनी जिंदगी में कोई चीज देखें कि मैं अगर ये करता रहा ना तो मैं इमाम के नजदीक नहीं जाऊंगा, उसको छोड़ना सबसे जरूरी है। सबसे अहम यह कि वो चीज छोड़ दें जिस बारे में आपको पता है कि इमाम कबूल नहीं करेंगे। अगर आपकी जिंदगी में ऐसी कोई चीज है, इसको छोड़ना वाजिब है, वरना नाऊज़ बिल्लाह ताला। मैं कहता हूं आखिरी जुमला एक और बात कहूं, इमाम की तशरीफ आवरी इम्तिहान का दिन नहीं है, इनाम का दिन है। उस दिन रिजल्ट अनाउंस होने वाला है, एग्जाम कब हो रहा है, ये हो रहा है, ये एग्जाम हो रहा है। गैबत इम्तिहान है, तशरीफ आवरी इनाम है। वो तशरीफ लाएंगे तो जो लोग इम्तिहान में कामयाब हुए वो नुसरत करेंगे। रिवायात बार बार हमसे कह रही है, कुरान करीम की आय करीम हमसे कह रही है, एक खास वक्त के बाद फिर दरवाजा बंद हो जाएगा। उन लोगों ने जीतना है जो इस वक्त जीतना चाह रहे हैं। तो ऐसा मुसलमान शब 15 शाबान है, परवरदिगार आलम के हुजूर दुआ करते हैं। और मैं नहीं चाहता था कि वक्त ज्यादा लूं आपका, लेकिन यह है कि चूंकि बात चल निकली थी तो फिर मैंने सोचा ऐसा ना हो कि मैं एक नामुकम्मल बिल्कुल ही गैर मुफीद जगह के ऊपर रोक लूं, कुछ इतना फायदे की जगह के ऊपर रोक लूं। और मैनेजमेंट को बड़ी प्रॉब्लम होती है जब टाइम ज्यादा हो जाता है, मुझे भी इसका एहसास है, लेकिन बहरहाल कुछ जगह मजबूरी हो जाती है। खुदा से दुआ करते हैं, ऐ पाक परवरदिगार, शब 15 शाबान है, तू हमारे दिलों को जानता है खुदाया, तो अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम से हमारी वाबस्तगी, हमारी मोहब्बत से वाकिफ़ है, तो जो वास्ता मोहम्मद आल मोहम्मद का इस कलील को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। पाक परवरदिगार दीन इस्लाम कुरान करीम अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को हमारे दिलों में इजाफा फरमा। पाक परवरदिगार दुनिया और आखरत में उनकी हमराही नसीब फरमा, इस दुनिया में उनकी ज़ियारत और उस दुनिया में उनकी शफात से सरफराज फरमा। खुदा 15 शाबान की शब है, तूने दुआओं के लिए वादे किए हैं पाक परवरदिगार, इस शब में तेरे बेहतरीन बंदे जो अमाल अंजाम देंगे पाक परवरदिगार, उन अमाल का वास्ता जो इमाम के नज़र लुत्फ की हैसियत है उसका वास्ता है पाक परवरदिगार, हमारे हमारे मरहूमीन के तमाम गुनाह ने सगीरा व कबीरा की मगफरत फरमा, हमारे मरहूमीन को शफात अहले बैत से सरफराज फरमा, अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम की जवार रहमत में जगह नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार उनकी मोहब्बत के सदक़े में पाक परवरदिगार उनके नक्शे कदम पर चलने की सआदत नसीब फरमा, जो उनके और हमारे दरमियान हमारे आमाल रुकावट बनते हैं पाक परवरदिगार उन आमाल को ख़त्म करने की सआदत नसीब फरमा, जो आमाल हमें उनसे नज़दीक कर सकें उन आमाल को बजा लाने की सआदत नसीब फरमा। ऐ पाक परवरदिगार हमें अपनी आदतों में, अपने आमाल में, अपनी ज़हनियत में अहले बैत का ताबेदार करार फरमा। ऐ पाक परवरदिगार इस 15 शाबान की शब के सदक़े में, साहिब शब के नाम सदक़े में, उनके मकाम के सदक़े में हमारे बीमारों को शिफाए आजुल कामिल नसीब फरमा, जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज फरमा। ऐ पाक परवरदिगार जो अहले बैत के चाहने वाले बेगुनाह जेलों के अंदर हैं, इमाम के नाम के सदक़े में उन्हें आज़ादी और रिहाई नसीब फरमा। जो मोमिनीन दुश्मनों की जद में है पाक परवरदिगार, ऐ पाक परवरदिगार इन मोमिनों को अमन अमान नसीब फरमा। जो मुजाहिदीन दुश्मन के खिलाफ बरसरे पैकार हैं, अहले बैत के चाहने वाले जो सख्तियां उठा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उलमा अपनी जिंदगियों की बाजी लगाए बैठे हैं, आम अफराद अपनी जान कुर्बान कर रहे हैं, पाक परवरदिगार तुझे वास्ता अहले बैत अथार अलैहिस्सलाम का, अहले ईमान दुनिया में जहां कहीं भी हैं उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। ऐ पाक परवरदिगार परचम ईमान को फतह नुसरत नसीब फरमा, परचम कुफ्र नफाक को जिल्लत व खारी नसीब फरमा। ऐ खुदाया तुझे वास्ता मोहम्मद आले मोहम्मद का, सैयद सरदार मौला आका इमाम आखिर जमा के जहूर में ताजीम फरमा। ओ
उनके आवाज अनुसार की तादाद में इजाफा फरमा, इमाम के दुश्मनों को नीस्त नाबूद फरमा, हमें हमारी नस्लों को उनके ताबेदारों में आबान अंसार में करार फरमा। अरे खुदाया, एक आखिरी दुआ है खुदाया, इस शब के सदक़े में, उन नेक आमाल के सदक़े में जो तूने हमारी जिंदगी में कभी हमसे देखे, हमारे अजदाद से देखे, उन शहदा की कुर्बानियों के सदक़े में या खुदा, जो कोई भी तेरा महबूब है खुदाया, उसके नाम के सदक़े में, ये जिंदगी तेरी अमानत है, हम अमानत में खयानत करने वाले नहीं बनना चाहते। खुदाया, हमारी जिंदगियों का इख्तिताम अपनी राह में शहादत कर फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम, बिजाह मुहम्मदिन व आलिहित्ताहिरीन।